आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
राम राम, राम राम गौरव बहन, गणा गणा राम राम और राम राम ऊंटारी बाता कार्यक्रम सुनने वाला सगला पशुपालक भाई ने।
राम राम भोमजी भाई।
राम राम
भोमजी भाई। आए गया ऊंटारी बाता करण ने।
हम नहीं पड़े गौरा बहन, और थी तो के वो के हाजिरी हाथी हुए हुए की नहीं हुए
भोमजी भाई। बात तो खरी के हूँ, क्योंकि अवसर चूकिया ने मौसर नहीं मिले थान तो ठाई है।
अरे गौरा बहन, आपा तो इन अवसर ने सौभाग्य समझा, क्योंकि पावना आवे पर ऊंट पालक का सारू है।
भोमजी भाई देखो, मैं तो प्रयास आई करूँ कि कोई भी ऊंट पालक जिन बात आपा को नहीं चुकानी, इनी बात कोई भी ऊंट पालक इन अवसर ने नहीं चुके। और वारे सारू देखो, आपने जी को बन रहे भाई ने भाव है नी, वारे सारू थाने एक दूहो सुनाऊ।
हाँ हाँ जरूर
सुनाऊ। आवतड़ा रोकू नहीं, आवतड़ा रोकू नहीं, जावतड़ा लाऊ मोड़,
जावतड़ा लाऊ मोड़,
मोड़ हंसा ने सरवर गणा, सरवर हंस
किरोड़। तो देखो सा, सगले ऊंट पालका ने मारे तो ओई हाथ जोड़ निवेदन है कि गौरव बहन री बाता ने मानो, और जिका भी अठे पावना ऊंट पालका सरु ज्ञान री हाथी लेर आवे नी, उन माए खुद री पाती जरूर ले उठा, जिनसु लाभ भी मिलेला।
आज अपने ऊंट पालका सरु ज्ञान री हाथी लेट थान ठाए कुण पधारिया है।
कुण पधारिया?
पधारिया है पावना डॉक्टर अशोक कुमार जी नागपाल।
अच्छा, अरे आप है प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, और आज आप गौरव बहन बात कराना उष्ट उत्पादन और प्रजनन माए पशु पोषण रो महत्व।
सगला हूँ पहला डॉक्टर साहब रो स्वागत करो, राम राम तो करला।
बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब आप रो चौपाल में घनो घनो स्वागत है, और आपने में करा
राम राम, राम सा।
राम राम गौरव बहन, राम राम भोम जी।
डॉक्टर साहब देखो, आप अठे पधारिया हो घने हरकरी बात है, क्योंकि मैं तो कहो के ज्ञान री हाथी लेर आप अठे आया हो। अब देखो मैं कितनी पाती ले सका, आ भोम जी भाई अपना माथे है कि यार तो ज्ञान रो खजानो भरियोड़ो है। और डॉक्टर साहब देखो, मैं तो कहूँ हूँ की खावनो पेट सुहाव तो और पैर नो जग सुहाव तो, क्योंकि आपने तो ठाई है की जिनावरा रा पग पेट माए होया करे। पर आज बात करी है भोम जी भाई के ऊंटारे उत्पादन और प्रजनन री बात कराला, तो देखो पोषण री बात तो करनी ही पड़ेला आपने। तो सगड़ा पहला तो ऊंट पालका ने आप बता दो के पशु पोषण कैवे किन्ने है और जरूरी क्यों है।
पशुओं का और आहार का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। यदि आप जो है उनके शरीर को देखो तो इसमें 50-60% पानी, 15-26% इसमें प्रोटीन, और 15-18% वसा, और 3.5-4.5% इसमें खनिज तत्व होते हैं। तो ये उसको खनिज तत्व आहार से ही मिलते हैं, क्योंकि आहार भी जो इन्हीं जो है पोषक तत्वों से बना होता है। तो यदि उसको पशु को ये आहार जो है आहार से मिलेंगे और कहीं से उसको नहीं मिल सकते, तो इसलिए उसको एक जो है ये पोषक तत्व उसको पोषण का उसके लिए बहुत महत्व है।
भोम जी भाई देखो, जिन बात बुद्धि बाढ़ खेत ने ले डूबे है नी, इनी बात जे शरीर ने खुराक चौकी नहीं मिले नी, तो उत्पादन और प्रजनन रामायण ने भी नुकसान होनो ही होनो है। आ मारे तो समझ में आई है।
अब गौरव बहन डॉक्टर साहब से पूछू, देखो अब आज को बगत है वो है सियाड़े रो वक्त शुरू हो गए, और ये बगत रे मायने क्या है की प्रजनन रो वक्त भी है, ऊटनी रे ज्ञापन रो भी वक्त है। तो इन बेड़ा डॉक्टर साहब महाराज का पशुपालक भाई है, पोषक तत्व और पोषण के बारे में घणो समझते है कोनी, बने आ समझाओ कि संतुलित आहार किन भात बनावे जिनसे उन में सगला पोषक तत्व शामिल हो जावे और महाराज का ऊंट या ऊंटनी है बस बिल्कुल स्वस्थ रहे।
ऊंट पालक भाइयों बहनों, जो ये प्रजनन अवस्था में भी जो है एक खास तरह के जो पोषण जरूरी है, जिससे उसको सभी पोषक तत्व समान अनुपात और समान मात्रा में मिले। जब हम ऐसा आहार देते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व प्रोटीन वसा खनिज तत्व विटामिंस उसको सही अनुपात और मात्रा में मिलते हैं, तो उसको हम संतुलित आहार बोलते हैं। ये प्रजनन के लिए और सारी अवस्थाओं के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ताकि उसका संतुलित जो है प्रजनन हो सके।
और डॉक्टर साहब देखो, बात करी आप उठा रहे उत्पादन री, तो उत्पादन री बात करा तो इन उत्पादकता माथे भी पोषण रो कोई प्रभाव पड़े है कहीं?
बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। यदि पशु को सही मात्रा में और सही अनुपात में पोषक तत्व यदि नहीं मिलेंगे, तो जो है उसके शरीर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। उसके शरीर की जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी, उसका शरीर कमजोर हो पाएगा। कमजोर होने से ये होता है कि वो उत्पादकता के लिए उसका शरीर नहीं बन पाता है, तो उत्पादन वो नहीं दे सकता। इसी तरह ऊंटनी ब्याती है, उससे जो है दूध लेते हो, वो दूध का उत्पादन कर रही होती है। यदि आप पोषक तत्व उसको नहीं देंगे, तो उसका दूध का उत्पादन कम हो जाएगा, जाएगा, उसका देह भार गिर जाएगा।
तो खान पीन पूरा ध्यान रखना चाहिए,
पूरा ध्यान नहीं रखे तो उत्पादन पूरा को नहीं मिलेगा। पैसे डोकरी टक्कर सर मुंडा, क्योंकि कोई नवी नवी व्याधियां जरूर हो सके है अगर पोषण सही नहीं मिली है तो।
अब डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उत्पादन की बात करा तो सगली उत्पादकता सारू एक जड़ो पोषण दी दीजिए या न्यारो न्यारो दी दीजिए?
भोम जी भाई, ऊंट के अलग अलग जो है उत्पादन के लिए अलग अलग पोषण की जरूरत होती है। जैसे हम ऊंट से जो है बोझा ढोने का काम लेते हैं,
हाँ।
उसके लिए ऊंट को ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है,
हाँ।
तो ऊंट को एक तो अपने शरीर की आवश्यकता, शरीर के लिए क्रियाओं के लिए जरूरत होती है। इसके लिए जितने घंटे काम लेते हैं, भारी काम लेते हैं या हल्का काम लेते हैं, उसके लिए उसको अलग अलग पोषण की जरूरत है। तो उसको अपने निर्वाह के लिए शरीर के करीब जो है 1-1.25% के हिसाब से उसको जो है आहार की जरूरत होती है। यदि वो 500 किलो का या 600 किलो का ऊंट है तो उसको 5-6 किलो शुष्क आहार, कहने का मतलब शुष्क आहार में 10% यदि उसमें मूंगफली चारे में आपका 10% पानी है, 90% शुष्क पदार्थ है, तो आप उसको 7-8 किलो जो है उसके लिए निर्वाह के लिए काफी है। यदि आप उसको 1 घंटा लेते हैं तो 1 घंटे के करीब जो है 2 मेगा कैलोरी की जरूरत पड़ती है, जो कि आहार में भी जो है उसके चारे में भी 2 मेगा कैलोरी होती है। यदि 1 घंटा काम लेते हैं तो 1 किलो उसको चारा देंगे, हल्का काम लेंगे तो उससे उसकी व्यवस्था पूरी हो जाएगी। यदि आप 6 घंटे लेंगे तो उसको 6 किलो आहार आप दीजिए, मूंगफली का चारा दीजिए, उससे उसकी ऊर्जा पूरी होगी। तो उसे प्रोटीन की इसमें कोई खास जरूरत नहीं होती है, उसके आहार में जो है प्रोटीन होता है कि जो है मूंगफली चारे में तो काफी प्रोटीन होता है, 10-12% भी आ जाता है। नॉर्मली उसको 300 ग्राम की आवश्यकता होती है, जो कि उसमें काफी होती है। तो आप जो है उसको यदि दिन में 1 या 1.5 किलो 2 किलो यदि आप दाना देंगे तो उसमें जो है उसका शरीर अच्छा बना रहेगा।
गौरा बहन केवल मतलब वही है कि अगर भी खान पान पर ध्यान रखा, नियमित पोषण देता, जो आप काम ले वो अपने अच्छी तरह मिलते रहे।
बात तो है ही, आप तो कहे यहाँ के गले दाड़ में तो आवे हार्ड में। तो डॉक्टर साहब दूध रे सारू अपने कहीं पोषण देना पड़े?
ऊंटनी है वो सर्दी ऋतु में ब्याहती है, वो 12 से 24 महीने तक दूध देती है। तो लेकिन आप उसको अच्छा पोषण देंगे तो 8 से 10 किलो तक दूध वो आसानी से दे देती है। उसका जो पोषण है, उसका देह भार, कितना वो दूध दे रही है और मौसम कैसा है, उसके हिसाब से उसको देना चाहिए। जैसे है ऊंटनी ब्याती है तो उसमें उसका शरीर काफी कोमल होता है, तो इसमें उसको आप है सख्त चारे वाला आहार ना दें, उसको हल्के चारे वाला जो सुपाचक हो वह आहार दें। एक तो है उसका दूध उत्पादन, तो उसके जो है दूध उत्पादन वो अपने शरीर को उसको बनाए रखने के लिए दोनों के लिए उसको आवश्यकता होती है। तो करीब उसको जो है 12 मेगा कैलोरी अपने शरीर के लिए जरूरत होती है। तो इसका इसके बाद यदि 1 किलो दूध के लिए उसको 1 मेगा कैलोरी की जरूरत पड़ती है, उसको 0.5 किलो जो है चारे से भी पूर्त हो जाती है। तो यदि क्योंकि वो पाचक नहीं होता है चारा, इसलिए हमें जो उसको सांद्र मिश्रण जिसको बोलते हैं या कंसंट्रेट बोलते हैं या दाना बोलते हैं वो देना चाहिए। 1 किलो यदि आप दाना देंगे वो 3 किलो दूध के लिए पर्याप्त है। शरीर के मेंटेन करने के लिए 1 किलो दाना दीजिए, इसके बाद जो है जितना वो दूध दे रही है, यदि 3 किलो दूध देती है तो आप 1 किलो दाना, 6 किलो देती है 2 किलो दाना, उसके शरीर को बनाए रखने के लिए उसको जो आप सूखा आहार देंगे, जब मूंगफली का चारा देंगे, उसके लिए वो काफी पर्याप्त रहता है। तो आप देखिएगा यदि 500 किलो की यदि ऊंटनी है तो कम से कम उसको 12 किलो जो है चारा मिलना चाहिए, जिसमें करीब 3 किलो उसको दाना हो।
तो समझ में आई बोमजी भाई कि जेड़ो उत्पाद लेना है, जिको काम लेना है, उन अनुसार पोषण भी देना है।
और देखो समझ में आएगी और मैं लिख भी लिए हूँ।
लिख लिया नहीं जानते तो बढ़िया गुणिया हो भाई, चार लोगों ने और बताओ ला, पर देखो सुनियोड़ो भी गुण लेनी तो वो भी फायदो कर ही लेवे है। डॉक्टर साहब जी को भी जानकारी देवे नहीं वेन सु फायदा उठाना है, और मैं तो चूक करूँ ही कोनी करूँ नहीं, पखा लाऊ साथे क्योंकि आऊ होनी जने आ तैयारी भेड़ी कर लाऊ, क्योंकि पावन आई वारे मनवार सारू पछे कहीं काडू पखाल भर लायू गीतरला थे क्यों तो एक गीत तो काडू
हुकुम। तो आप से सुनो सा गबरा बेनी पखाल सु एक फूट रो सो गीतर लो। कार्यक्रम
के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
इन बेड़ा आप से सुन गया हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ऊंटा री बाता। और आज चौपाल में जानकारी देने सारू पधारिया है डॉक्टर अशोक कुमार नागपाल, आप प्रधान वैज्ञानिक है राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। और आज आप बातचीत करिया उष्ट्र उत्पादन और प्रजनन में पशु पोषण रो महत्व।
और अबे डॉक्टर साहब आप बात करा प्रजनन री, तो प्रजनन रे मायने पशु पोषण रो कई महत्व हो यार।
गौरा बहन जी, प्रजनन जो है मादा ऊंटनी में अलग होता है और नर में अलग होता है। तो जो है मादा ऊंटनी में जो गर्भकाल है वो 13 महीने का होता है। पहले जो है 9 महीने उसके शरीर में एक नया जीवन जो है पलता है। तो जो है 13 महीने के पहले 9 महीने में उसके में उसका जो है भ्रूण है वो बड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए कुछ ज़्यादा उसको पोषण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो गर्भकाल के आखिरी 4 महीनों में भ्रूण जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। भ्रूण का 70% उसका जो वजन जो है उसी में जो है काल में वो बढ़ता है। जैसे 40 किलो का यदि बच्चा पैदा होता है तो उसका कम से कम 30 किलो वजन जो है आखिरी 3 महीने में ही होता है। इसलिए जो है उसके बढ़ते हुए बच्चे के लिए आपको पोषण तत्वों की जो है जरूरतों को पूर्ण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चा जो है कमजोर पैदा होगा।
देखो आएगी समझ में बात,
आई भाई आई के पशु पोषण रो तो पूरा पूरा महत्व है।
हाँ। देखो गौरा बहन कनी कनी हुए कि ये सियाली ऋतु माने ऊंट के खाण पीनो छोड़ दे अनमनो सो हो जाए करे, पर माई कह करे कि ई बेड़ा बहुत झूठ में आ जाए करे और झूठ में आने रे बाद में वो खाण पीनो बंद कर दे, वो खाण पीनो चालू रखे बट क्या सो खान पान देवा कि वो खा तो पी तो भी रहे और शरीर जो भी स्वस्थ रहे।
भौमजी भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। नर ऊंट का प्रजनन काल है ये गाय भैंस भेड़ बकरी से अलग होता है। ये सर्दी में शुरू इसके प्रजनन का अपना उसमें आता है और ये सर्दी से लेकर गर्मी तक जो है इसका चलता है। सर्दी में ये खाना पीना इसमें समस्या ये होती है कि खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है।
हाँ।
ये इसके जो है खाना पीने के जो है जब छोड़ देता है तो इसके शरीर में 15-20% शरीर में इसके देहभार में कमी आ जाती है।
हाँ।
इसमें कमजोरी आ जाती है। तो यदि इस समय ये नहीं खा पाएगा तो ये इसमें जो है प्रजनन की शक्ति नहीं इसकी बनी रह सकती। तो इसलिए जरूरी है इसको ऐसा पोषण दें ताकि इसका शरीर जो है वो अपने शरीर के हिसाब से अपने पोषक तत्वों की आपूर्ति हो सके। यदि आप उसको चारा देंगे तो चारे से उसको पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है। सिर्फ वो सिर्फ उस समय जो है यदि वो ऊँट है वो 10 किलो चारा खा रहा है तो इस समय उसका 4 और 5 किलो ही रह जाता है। इसलिए जरूरी है उसको पौष्टिक आहार दें। ये आहार जो है उसको दाने से ही मिल पाएगा। उसको जो है गुड़ और तेल भी दिया जा सकता है। यदि आप ऊँट को 1/2 किलो तेल 250 ग्राम गुड़ दोनों को मिलाकर देंगे थोड़ा हल्का गर्म करके देंगे तो उसकी शक्ति बनी रहेगी। यदि ये नहीं आपके पास है तो 2 किलो दाना जो है गोलीदार दाना हो तो वो भी जो बाजार में मिलता है जो भी आप देंगे तो उसका शरीर जो है उसका जो आहार है वो बढ़कर कम से कम 7 किलो 8 किलो तक आ जाएगा, जिससे उसका देहभार जो बना रहेगा और उसकी प्रजनन शक्ति बनी रहेगी।
और डॉक्टर साहब देखो नर ऊँट की बात करिए तो बात ऊँटनी की भी करनी पड़ेगा, तो इरे प्रजनन समय किन बात रो पोषण करना चाहिए?
तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ऊँटनी का प्रजनन काल 13 महीने का होता है। तो जो प्रजनन का इसमें ऊँटनी में जो एक नए बच्चे को जन्म देती है तो ये बच्चा जो है इसके बच्चे का विकास जो होता है आखिरी 3-4 महीनों में वो ज्यादा बढ़ता है। लगभग 70% इसका जो है बच्चे का भार जो है वो आखिरी 4 महीनों में होता है। इसलिए उस समय जो है पहले 9 महीने में इतने पोषक तत्वों की नहीं जरूरत होती है, उसको सामान्य जो है आप आहार दे सकते हैं। लेकिन आखिरी 4 महीनों में उसको जो मूंगफली का चारा या जो भी आपको आहार देते हैं 7-8 किलो देते हैं तो उसको 1-2 किलो आप दाना दीजिए ताकि उससे उसको प्रोटीन खनिज तत्वों की कैल्शियम फास्फोरस और वाइटमिन वगैरह उसको मिले ताकि उसके जो है भ्रूण का विकास अच्छी तरह हो पाए और एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो।
बूम जी भाई देखो बात अभी कर लिया कर टोर्डियर और पोषण कैडो होना चाहिए जिनसु के वयस्क वजन अभी ने कोई तरह की समस्या वानी आवे
वो हष्टपुष्ट हुए।
गबरा बहन जी, भूम जी भाई, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली ये है कि ऊंट का उत्पादन वो उसके जो है टोड़िया के जैसे आप उसका पोषण करेंगे उसके हिसाब से वो वयस्क होगा। यदि आप उसका जो है टोड़िया का पोषण सही तरीके से नहीं करोगे तो एक तो कमजोर होगा, फिर है बहुत देर बाद वो व्यस्क होगा। यदि डोड़िया का आप सही पोषण करेंगे तो 3 साल में आप वो व्यस्क हो सकता है, नहीं तो वो है उसको आप कम पोषण देंगे तो 5 साल लगेंगे। जैसे बच्चा पैदा होता है आप उसको जो है उसको खीस देना चाहिए, 10-15 दिन बाद वो चलना फिरना शुरू हो जाता है। उसको मादा के साथ आप भेजिए, उसको आप दूध भी पिलाइए, साथ में हरा चारा भी दीजिए, दाना भी दीजिए और 3 महीने तक उसका वजन जो है 100 किलो हो जाना चाहिए। और इसी तरह आप धीरे दूध को कम कर सकते हैं, आहार को बढ़ा सकते हैं, दाना दीजिए, सूखा चारा दीजिए, हरा चारा दीजिए, तो वो एक साल के अंदर जो है एक साल तक 250 किलोग्राम तक का हो जाएगा। इसी तरह आप उसके आहार को देंगे एक से दो साल के बीच में तो 400 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से उसकी देहभार वृद्धि होगी और दो साल में वो जो है 400-450 किलो का हो जाएगा। और तीसरे साल में इसका जो है यदि वही वैसे इसका आहार बनाए रखिए, इसमें जो है तीन साल में 550 किलो वजन हो जाएगा। 550 और 500 किलो के वजन देहभार वाले ऊंट को हम व्यस्क मानते हैं। तो आप देखेंगे कि सही पोषण से आप उसको जल्दी जो है व्यस्क बना सकते हैं।
डॉक्टर साहब कितनी बातें अपन खुला सो करती हो।
हाँ।
चोखो पोषण देवा तो उत्पादन चोखो हुई, ध्यान रखा तो प्रजनन सही तरीके वो टोडियो चोखो हुई, व्यस्क हुई और आप इसको पूरो पूरो लाभ ले सका। केवन री बात के जे डॉक्टर साहब री बात ध्यान में रखी।
हाँ।
तो ऊंट पालक ने कठे कोई फोड़ा होने की गुंजाइश ही कोनी
है। हाँ।
और एडरे माने देखो अब घबरा बहन री पखाल तो खुल खुल किए बिना रह ही कोनी सके, क्योंकि एडो ज्ञान रो खजानो जो आपने देवे बारे सारू अपने खजाने रे मानू एक गीत काढ़नो तो बने ही है। देखो गीत अबे हूँ कहीं मारी दायरो को निकालू
तो
मैं हूँ डॉक्टर साहब ने पूछू।
अच्छा।
कि याने गीत किस क्योंकि इतने ज्ञान रे मायने कहीं है आप रे मनोरंजन सारू भी कोई वगत निकाले है कारण खाली चौपड़िया ही बने हैं।
तो पूछ ला भाई डॉक्टर साहब आप किसो गीत लो सुनना चाहो।
एक यहूदी फिल्म का गाना है।
हाँ।
वो आप हमें सुना दे।
किसो गीत लो?
ये मेरा
दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुसूर, ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुसूर, ये मेरा दीवानापन है। जाएंगे हम जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम।
तो सा आ थी डॉक्टर साहब जी पसंद। इन बेड़ा आप से सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटारी बाता। और आज चौपाल में जानकारी दिवन सर पधारे है डॉक्टर अशोक कुमार नागपाल, आप प्रधान वैज्ञानिक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। और आज आप बातचीत करिया उष्ट उत्पादन और प्रजनन में पशु पोषण रो महत्व।
और डॉक्टर साहब देखो जो आप बात करी पशु पोषण री, अब बात करा कि पशु पोषण रे मायने जे खनिज तत्व री कमी होगी या लवण मिश्रण री कमी होगी या और भी कोई पोषक तत्व री कमी होगी तो उन रे मायने प्रजनन रे वक्त कोई ऐसी समस्या हो सके है?
किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उसके उसके जो है विकास पर असर पड़ता है, गर्भाशय के ऊपर असर पड़ता है। प्रोटीन उसमें देना जरूरी है, खनिज तत्व देना जरूरी है, ताकि जो है जैसे इसमें एक तो प्रोटीन, दूसरा जो है खनिज तत्व कैल्शियम फास्फोरस और जिंक आयरन, जिसको हम लोहा बोलते हैं, लोहा जस्ता और मैंगनीज, ये जो है गर्भकाल में इनका बहुत महत्व रहता है। ये शरीर को अंदर की बनावट को गर्भाशय को बनाते हैं। यदि ये कम पड़ जाए तो उसके गर्भाशय को अच्छी तरह उसका विकास नहीं हो पाता, जिससे कि गर्भ में यदि वो जब भ्रूण है वो दीवार में भी जो नहीं चिप पाता, और यदि चिप गया तो वो भ्रूण का विकास अच्छी तरह नहीं हो पाता है, या तो वो कमजोर पैदा होगा और उसका गर्भपात भी हो सकता है। विटामिंस भी उसको देने चाहिए ताकि जो है उसके शरीर का अच्छी तरह विकास हो सके, और इसके लिए हमें हरा चारा उसको देना चाहिए।
तो मोटी बात है कि जो पोषण सही नहीं है नहीं तो प्रजनन वगैरह कई तरह की समस्या हो सके।
अब डॉक्टर साहब मैंने आप बताओ कि पशु पोषण की नवी नवी तकनीक है, किसी किसी है जिनसे ऊंट पालका ने पौष्टिक आहार है वो सस्तो मिल जावे।
बोम जी भाई, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमें जो है हम पशु को आहार देते हैं, चारा देते हैं, पर उसको जो है सही ढंग से हमें देना चाहिए। अब एक तो तरीका ये है कि हम पशु को हरा चारा, सूखा चारा, दाना अलग अलग दें या इनको मिलाकर दें, सही मात्रा और अनुपात में उसको पौष्टिक तो मिल सके। एक और तरीका ये है कि हमने अपने राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में हमने मशीनें लगाई हुई हैं, जिससे हम जो है हरे चारे को, सूखे चारे को और दाने को, दाने में जैसे है ग्वार चूरी है, बाजरा है और शीरा है, नमक है और खनिज मिश्रण है, तो इन चीजों को मिलाकर हमने जो है संतुलित आहार तैयार किए हैं। आप सभी को मिक्स कर दें तो आप इसके संतुलित आहार मिल जाएगा। संतुलित आहार का मतलब होता है कि सारे पोषक तत्व एक संतुलित अनुपात में है, सही मात्रा में वो उसको खाता है, सही मात्रा में वो चोखा चारा भी खाता है, हरा चारा भी खाता है और दाना भी वो खाता है। संतुलित आहार की ईंटें हैं, एक तो जगह कम होती है, इसको आप आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं, ऊंट को डालने में भी बड़ी आसानी रहती है। ये जो है एक बहुत अच्छा विकल्प है, दो पांच पांच किलो की उसके सामने डाल देंगे तो उसका दिन भर का उसका काम चल जाएगा। और एक और तरीका है कि इसको संतुलित आहार की गोले भी हमने बनाई है। अच्छा। इसमें भी जो पोषक तत्व बड़े सही अनुपात में मिलते हैं, ये भी एक संतुलित ही है हमने बनाई है।
और डॉक्टर साहब देखो चलते चलते कोई ऊंट पालकर ने बुढ़ा ऊंट देनी चाहो,
घबरा बेन जी, भोम जी भाई, मेरा तो यही कहना है कि जो ऊंट पालते हैं तो ये आपकी जीविका का साधन है, आप इसे कमाई कहते हैं, तो आपके लिए वो इतना करता है, तो कम से कम उसका भी आप ध्यान रखिए, उसको संतुलित आहार दीजिए, उसको सब पोषक तत्व दीजिए जिसको जरूरत है, जिससे अपना अपनी शक्ति बनाए रखे और आपको लंबे समय तक आपका जो है साथ दे सके।
तो सर देखो आज चौपाल में जानकारी देने सर पधारे हैं डॉक्टर अशोक कुमार नागपाल। डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारिया और माने इतनी अच्छी चोखी ज्ञान वर्धक जानकारी दी, इन सारू मैं आपने करा धन्यवाद और आपने मैं करा राम राम सा,
राम राम से।
बोम जी भाई,
हाँ।
डॉक्टर अशोक कुमार नागपाल साहब ने तो राम राम कर दिया, पर देखो मारे करने आयोड है कागदारो डिगलो।
हाँ।
अब इन रे सारू तो चालनो पड़ी डॉक्टर शरद चंद्र जी मेहता साहब कने।
हाँ तो चलो उस अनुसंधान केंद्र भी
तो चालनो, तो मैं तो आई तो क्यों था ने, तो चलो चलो चलो।
ओ देखो ओ गेट है ओ खड़कालू में,
ओ अंग्रेजी बोलन लाग गया थे तो गेट और केवन लाग गया उस यार, तो क्या बोल जी
बैठा काम कर रिया है, राम राम तो करो,
राम 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 राम
राम राम सा, राम राम भोम जी भाई, राम राम गौरव।
देखो डॉक्टर साहब इतना सारा कागज दिया आयोड़ा है तो मैं कब जवाब ले सारू, तो शरद चंद्र जी ने चालनी पड़ी है।
बिल्कुल बिल्कुल,
उस अनुसंधान केंद्र बीकानेर मायने आए बिना तो पार पड़े को नहीं, पर देखो ये कागज दिया डॉक्टर साहब मोकला आयोड़ा है तो क्यों तो मैं बाचू जी को थे बारा उथला दे दो।
बिल्कुल बिल्कुल,
तो डॉक्टर साहब देखो एक कागज आयोड़ा है मार्क, एक तो है देखो काड़ू खां जी बोजू सरसू, और एक कागज वेड़ोर वेड़ो लाग रहे है ओ है श्री बजरंग जीरो, ए है सरेरासु लिखणिया, ए लिखे है कि देखो काड़ू जी तो लिखे है कि ऊंट ने चक्कर गणावे है और वह चक्कर काट पड़ जावे है और मर जावे है, एडर माने कई करे, और बजरंग जी लिखे है कि बार ऊंट कापन लाग जावे है और पछे पड़ जावे है।
देखो सा ये दो स्थितियों में होता है, सबसे पहली बात तो है कि जब भी शरीर में ग्लूकोज की कमी होगी तो उसको चक्कर आएंगे, कांपेगा, और अंत में वो जब बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है तो गिर के मर भी सकता है। अब ग्लूकोज की कमी के कई सारे कारण होते हैं, और दूसरी स्थिति ये भी होती है कि कई बार ये चीजें बहुत अचानक होती है, जब ये काम धीरे धीरे हो रहा है तो हमें देखना चाहिए कि हमें तीव्रसा का टीका इसको लगाया या नहीं लगाया, क्योंकि ज्यादातर स्थिति में ऊँटों में यही होता है कि तीव्रसा का टीका अगर नियमित रूप से नहीं लगाए तो वो ऊँट दो या तीन साल में कमजोर होते होते फिर अंत में कांपता है, चक्कर काटता है, गिर जाता है और मर जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि सब कुछ ठीक है, हमने टीका भी लगवाया, सब कुछ किया, फिर भी ये ऊँट में ऐसा क्यों हुआ, तो हमारा ध्यान जाता है कि कोई मस्तिष्क से संबंधित इसमें बीमारी रही हो या कोई ऐसा जहर जिसने सीधा सीधा मस्तिष्क पे असर किया हो, तो उस स्थिति में आप पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि वो पशु चिकित्सक से संपर्क करे, उसकी जांच कराए, कौन सा जहर है, किस कारण से ऐसा हुआ, वो उसकी पूरी जांच करके ही उसका इलाज ले, लेकिन पहले ये देख लें कि तीव्रसा का टीका नियमित रूप से लगा है या नहीं लगा है।
और ओ एक डॉक्टर साहब अगलो कागज है, श्री गणेश रेवारी भैंसड़ा खुर्द उदयपुर से लिखे है था कि ऊंट के पैर में चोट है, ठीक होनी हो रही है, कहीं करा?
देखो साहब, ऊंट के पैर में जो चोट है उदयपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसलिए लगती है कि पथरीला क्षेत्र है।
हाँ।
और सामान्य रूप से जो घाव होता है वो 2-3 दिन में 4 दिन में मरहम पट्टी और अपना जो इंजेक्शन लगाते हैं उससे ठीक हो जाता है, लेकिन अभी मैंने कुछ केस इनके यहाँ भी देखे, कुछ उदयपुर में मैंने पशु चिकित्सकों से बातचीत भी की। हम कई बार देखते हैं कि घाव में चोट लगी और अंदर तक कोई चीज चली गई और ऊपर से घाव बंद हो गया, उसके कारण भी कई सारी स्थितियां होती है। हम कई बार कहते हैं कि टिटनस के कीटाणु भी पल जाते हैं और वो भी नुकसान कर देते हैं। तो जब भी आप देखें कि शुरुआत में अगर 2-3 दिन में आपने गाँव साफ किया, मलम लगाई और एंटीबायोटिक का इंजेक्शन 3-4 दिन लगाया और ठीक हो गया जब तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको या तो गाँव दिखाई नहीं दे रहा या ठीक नहीं हो रहा, दोनों ही स्थिति में आप वहाँ पे पॉलीक्लिनिक में संपर्क करें। वहाँ पे डॉक्टर अरोड़ा हैं, पशु चिकित्सक हैं और रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो एक्सरे करेंगे, एक्सरे करके उसके सही कारण को जान करके आपको सही इलाज देंगे।
और वो आगलो कागज आयोडो है, नौरंग देसर सु लिखनिया है अमृता राम जी, ये लिखे है कि यार ऊंट कमजोर घणो है, कई करे?
देखो सर, कमजोर कई मामलों में होता है, लेकिन मैंने अक्सर अपने इस क्षेत्र में देखा है कि ऊंटों को ये जो कीड़े मारने की दवाई है बहुत सस्ती दवाई है, लेकिन फिर भी नियमित रूप से नहीं देते, ये जब तक कि बहुत जरूरी नहीं हो जाए, ऊंट काम करना बंद नहीं करते तब तक देते नहीं है। तो इनको मेरी सलाह है कि नियमित जो भी इलाज ले रहे हैं उसके साथ साथ जो है साल में कम से कम एक बार, अच्छा तो होता है 2 बार, लेकिन कम से कम एक बार फेनबेंडाजोल या एल्बेंडाजोल की गोली जरूर दें, ऊंट में जरूर वृद्धि होगी।
आपने बहुत बहुत धन्यवाद साहब कि आप हमारे कागदार जवाब दियो, और देखो कागदिया तो है पर बखत को है नहीं,
बखत हो तो ध्यान रखना ही पड़ी, क्योंकि कया करे कि बगत रबाया मोती नीब जो है, तो डॉक्टर साहब ने तो दे दा धन्यवाद उतरा देवन सारू, पर देखो बोमजी भाई जो को नुआ अपना ऊंट पालक है नी, बरे सारू एक ठिकाणो बता दो ताकि वे अपने और कागज लिख सके, हमारी कोई समस्या हुए तो।
हाँ, तो ठिकाणो लिखो सा, ऊंटा री बात कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर, और अबे माने आज्ञा दिलाओ सा घना घना
राम राम सा,
राम राम सा।
तो सा आथी आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटा री बाता, संयोजक श्री श्याम पवार, प्रस्तुति श्री मिलिंद पांडे, सहभागिता थी श्रीमती प्रभा थानवी और राम सहाय हर्षरी, और अबे राम राम सा।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
ऊंटारी बाता आकाशवाणी बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।